नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि गूगल के अनुचित रणनीति का इस्तेमाल करने के कारण सर्च इंजन के रूप में उसका प्रभुत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसी रणनीति के चलते ही उनकी कंपनी का प्रतिद्वंदी कार्यक्रम बिंग विफल रहा। बिंग भी सर्च इंजन के रूप में काम करता था। नडेला ने गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के खिलाफ दाखिल एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान वॉशिंगटन डीसी की अदालत में गवाही दी। ये मुकदमा कंपनी के खिलाफ सरकार द्वारा दाखिल किया गया है। न्याय मंत्रालय का आरोप है कि गूगल के उपभोक्ताओं की कीमत पर प्रतिस्पर्धा और नवाचार को कम करने के लिए अपने सर्वव्यापी सर्च इंजन के प्रभुत्व का दुरुपयोग किया। माइक्रोसॉफ्ट पर भी 1990 के दशक के अंत में ऐसे ही आरोप लगे थे। नडेला ने कहा कि गूगल का प्रभुत्व उन समझौतों के कारण था जिसने इसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर बना दिया। उन्होंने हालांकि इस तथ्य को खारिज कर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अमेज़न या सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे अधिक विशिष्ट सर्च इंजन ने उस बाजार को बदला है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट गूगल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली अशोक लेलैंड की सितंबर में वाहन बिक्री सालाना आधार पर 9% वृद्धि के साथ 19,202 इकाई रही। कंपनी ने ये जानकारी दी। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में 17,549 वाहन बेचे थे। अशोक लेलैंड के ओर से जारी एक बयान के अनुसार घरेलू बिक्री 10% बढ़कर 18,193 हो गई, जो एक साल पहले समान महीने में 16,499 इकाई थी। JSW समूह की कंपनी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर निर्गम मूल्य 119 रुपए से 20% से अधिक उछाल के साथ मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध हुए। BSE पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 20.16% की बढ़त के साथ 143 रुपए पर शुरुआत की। बाद में ये 30.16% बढ़कर 154.90 रुपए पर पहुंच गए। NSE पर ये 143 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। शुरुआती कारोबार के दौरान कंपनी का बाजार मूल्यांकन 32,371.52 करोड़ रुपए रहा। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO को 37 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 2,800 करोड़ रुपए के IPO के तहत मूल्य दायरा 113 से 119 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में चाय बागान श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 18 रुपए बढ़ाकर क्रमशः 250 रुपए और 228 रुपए करने का फैसला किया। शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल कर बैठक में 1 अक्टूबर से ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, मंत्रिमंडल ने चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया। ब्रह्मपुत्र घाटी में 1 अक्टूबर से दैनिक वेतन 232 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया और बराक घाटी में एक श्रमिकों को 210 रुपए के बजाय 228 रुपए मिलेंगे। शर्मा ने कहा कि सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के लिए उद्यान प्रबंधन को 20% बोनस देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण भी होगा। बजाज ऑटो के सितंबर में कुल बिक्री सालाना आधार पर 1% घटकर 3,92,558 इकाई रही। कंपनी ने सितंबर 2022 में 3,94,747 इकाइयों की बिक्री की थी। बजाज ऑटो लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि सितंबर में कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री 3,27,712 इकाई रही, जबकि एक साल पहले की अवधि में 3,48,355 इकाई थी। घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री 2,02,510 इकाई रही, जो एक साल पहले समान महीने में 2,22,912 इकाई थी। सितंबर 2023 में दोपहिया वाहनों के निर्यात में मामूली गिरावट आई, ये 1,25,202 इकाई रहा, जबकि पिछले साल सितंबर में 1,25,443 इकाई था। कंपनी के अनुसार कुल वाणिज्यिक वाहन की बिक्री हालांकि 40% बढ़कर 64,846 इकाई रही, जो पिछले साल समान अवधि में 46,392 इकाई थी। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत में मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देश स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 47वें स्थान पर पहुंच गया और अब वह जापान, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों से आगे है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला ने ये आंकड़ा पेश किया। देश में 5G की शुरुआत के बाद से मोबाइल स्पीड में 3.59 गुना वृद्धि देखी गई। औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 MBPS था, जो बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 MBPS हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत स्टॉकहोम घोषणा में निर्धारित वैश्विक सड़क सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक गडकरी ने चेक गणराज्य के प्राग में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस में मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए बात कही। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए सभी स्तरों पर विभिन्न संबद्ध पक्षों द्वारा व्यापक नजरिया अपनाने पर जोर दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने नियमों को पूरी तरह लागू करने के लिए जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। स्टॉकहोम घोषणा का लक्ष्य 2030 तक सड़कों पर होने वाली मौतों और गंभीर चोटों की संख्या को घटाकर आधा करना है। कर आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए 30 सितंबर की तय समय सीमा तक 30.75 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट ई फाइलिंग पोर्टल पर जमा की गई थी। आयकर विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि इन ऑडिट रिपोर्ट में से 29.5 लाख कर ऑडिट रिपोर्ट आंकलन वर्ष 2023-24 से संबंधित है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट फॉर्म 29B, 29C, 10CCB से संबंधित है। विभाग ने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए विभाग ने सघन पहुँच कार्यक्रम भी संचालित किए थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।